है। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उन्होंने अलबत्ता आज कहा है इनको क्रिस्टेंसन को, उन्होंने कहा जी आप आओ हंगरी, हम आपके साथ बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि ये भी हंगरी के भी बहुत सारे स्वीडन के साथ मसले थे और जिस तरह के बिल्कुल फिनलैंड के थे, और फिनलैंड के ऊपर भी तुर्की और हंगरी ने बहुत लंबी डिबेट्स की थी अलबत्ता लास्ट अप्रैल को लंबी डिबेट्स के बाद, और जब फिनलैंड ने सारा कुछ इनका पूरा किया जो इनको लिस्ट दी गई थी उसके बाद इट बिकेम 31st नेटो मेंबर। तो अब जो स्वीडन है वो बनेगा या नहीं, हंगरी का प्राइम मिनिस्टर अब जब इनको गो हेड देंगे तो ही ये मेंबर बनेंगे, तो अब देखेंगे क्या होता है इसमें। रॉयटर्स की आज एक खबर है जी, और इसने आज फिर से साउथ कोरिया और उसके एयरलाइंस के अंदर काफी खलबली मचाई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे जो क्रूज मिसल्स हैं वो आज फायर किए हैं वेस्ट कोस्ट में, और सियोल में जो उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं यानी कि साउथ कोरिया के जो ज्वाइंट चीफ है, उन्होंने कहा जी कि ये मिलिट्री ने डिटेक्ट किए हैं, जो इन्होंने बहुत सारे ये लॉन्च किए हैं येलो सी के अंदर, और हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न है। आपको पता ही है कि ये यूएस ने इनके ऊपर नॉर्थ कोरिया पे काफी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और जो है इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो कहते हैं फौरन इसको बंद करो, और बता नॉर्थ ने बड़ी डिफाइंस दिखाई है, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बल्कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जो है वेपन्स टेस्ट कंडक्ट किए थे जिसके के अंदर सॉलिड फ्यूल्ड हाइपरसोनिक बिलिस्टिक मिसल और न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर ड्रोन जो अटैक्स हैं उन तक को भी टेस्ट किया था थोड़े दिन पहले, और उन्होंने कहा था हम यूएसए की धमकियों से नहीं मानते और हम सियोल के साथ भी तमाम बातें बंद कर रहे हैं अगर वो हमारे ऊपर इस तरह की रोक लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ बातचीत होने लगी थी, दोस्ती की तरफ जाने लगे थे। तो आज ये इन्होंने फिर से जो ये क्रूज मिसल्स के किए हैं टेस्ट, तो उसके ऊपर आज फिर से चीजें भड़क गई हैं। ट्रंप साहब जो हैं जी वो ही हैज मूव्ड वन स्टेप क्लोजर टू यू नो एक्चुअली चैलेंजिंग डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंट है बाइडन साहब को, क्योंकि न्यू हैम्पशायर में इन्होंने जो है फर्स्ट इन नेशन प्राइमरी जो है वो जीती है, और अपनी जो रिपब्लिकन इनकी राइवल थी निकी हेली उनको हराया है। ट्रंप साहब जो है उनको 54.6% वोट्स मिले थे, निकी हेली को 43.2% मिले थे। इसके अलावा 22 डेलीगेट्स ऑफ रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जो है उनमें से 11 जो थे वो ट्रंप की तरफ गए और 8 जो है वो हेली की तरफ गए। न्यू हैम्पशायर जो है वो एक आखिरी चांस था निकी हेली के लिए कि वो डेंट कर सकती थी ट्रंप साहब की लीड को, लेकिन वो नहीं कर सकी, लेकिन फौरन ही जो है हार के बाद उन्होंने कहा जी कि अभी बहुत सारी स्टेट्स बाकी हैं और अभी तक उनकी कैंपेन जो है उसमें से उनका निकलने का कोई इरादा नहीं है, तो आगे चल के देखेंगे क्या होगा। ट्रंप साहब जो है वो अपनी इस कामयाबी के बाद हेडक्वार्टर्स जो है इनके नाशवा के अंदर उधर गए, तो उनको बड़ा गुस्सा आया जब इन्होंने ऐसी बातें की, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये ट्रंप साहब जो है ये बड़ी उनकी एज है और उनको रेड रन करना चाहिए और ये और वो है, उनको बड़ा गुस्सा आया ट्रंप साहब को। ट्रंप साहब ने अपने हेडक्वार्टर्स में जाके कहा हु द हेल्स इम्पोस्टर हु वेंट ऑन स्टेज एंड क्लेम्ड विक्ट्री। तो आपको पता ये लूज कैनन है बिल्कुल ही हमारे ट्रंप साहब जो है, तो भरत जी उन्होंने ये बात की। अच्छा जनाब, वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है और ये बहुत ही ज्यादा जो है ये अफसोस का मुकाम है, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है अमरीका और उसकी जो इतनी बड़ी खासतौर पे जो इनकी आईवी लीग यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से क्या तमाशे चल रहे हैं, कभी उनके प्रेसिडेंट्स को निकाल दिया जाता है, कभी उनको प्रेशराइज किया जाता है, ये जो सारा प्रो पैलेस्टीनियन और प्रो इजराइल जो रैलीज हो रही हैं सिर्फ उनकी बेस पे। पहले कहते थे जी हम बड़ा मैरिट के ऊपर बड़ा बात करते हैं, हम आदमी बंदों की काबिलियत के ऊपर बड़ा बात करते हैं, तो बस जिसने फिर अब प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट निकाला और उसके हक में बोल दिया तो फिर मेरिट और वो काबिलियत की ऐसी तैसी फेर दी और उसको कहा जी तुम जाओ है जी। अच्छा अब इस दफा क्या हुआ जी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रो पैलेस्टीनियन एक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे और उनके ऊपर स्प्रे किया गया एक ऐसा गंदा खून की तरह का चीज जिसमें के जो है सुविच की बदबू आ रही थी और डेड एनिमल्स की बदबू आ रही थी वो उनके ऊपर फेंका गया। तो जाहिर है कि वहां पे जितने भी वो लोग थे उनको उल्टियां आनी शुरू हो गई और उनकी अच्छा थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा जी क्योंकि बड़ी गंदी स्मेल थी इस वजह से शायद उनको उल्टियां आई हैं, उसके बाद जी उनकी आंखें जलना शुरू हो गई और उनके पेट में दर्द पड़ा इतना ज्यादा कि वो जमीन पे सारे लेट गए और उनको उठा उठा के जो है हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है और न्यूयॉर्क लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन जो अर्ली इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि इनको एक केमिकल सब्सटेंस का स्प्रे किया गया था, यानी कि इसको लिया जाएगा केमिकल अटैक। तो ये केमिकल सब्सटेंस का अटैक जो है इनके ऊपर हुआ है। अलबत्ता जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आज इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी कि ये एक आजाद यूनिवर्सिटी है, इसमें हर कोई अपनी जो है बात रख सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर केमिकल स्प्रेज करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इस तरह से थ्रेट्स देना, वायलेंस करनी, ये हम अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता न्यूयॉर्क पुलिस ने अभी तक कोई अरेस्ट तो नहीं किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और जैसे ही कुछ होगा तो हम इसके ऊपर करेंगे। तो मतलब दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि ये केमिकल वेपन्स अब कहां से आ रहे हैं भाई लोगों के पास, कि जो इनके ऊपर प्रो पैलेस्टीनियन जो निकल रहे हैं मोर्चे उनके ऊपर आप कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज एक और भी जो सबसे बड़ी जो खबर आज ट्रेंड कर रही थी ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया पे, तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट जो है हैज नाउ बिकम द सेकेंड कंपनी टू हिट द 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू मार्क, और इनके जो स्टॉक हैं वो राइज किए हैं 1.3% से टू $403.95 और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि 3 ट्रिलियन को अब ये टच कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट हैज बिकम द सेकेंड कंपनी आफ्टर एप्पल, लेकिन एप्पल जो है एप्पल ने किया था जो है वो सबसे पहले लास्ट ईयर 3 ट्रिलियन को, इन्होंने कोई 3.1 यानी सो दे हैव एक्चुअली सरपास्ड एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका 7.3% जो है ऑफ S&P 500 इंडेक्स में इनके शेयर्स हैं और इनके गेन्स जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंटरनेट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कितने ज्यादा ग्रोथ शो कर सकते हैं और अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं। आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पार्टनरशिप है वो ओपन AI इंक के साथ है और इसकी ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए तो उसकी वजह से जो है जो उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसकी वजह से वो कहते हैं जी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज किया है, बल्कि इस साल में 2024 का जो फिस्कल ईयर है उसमें 15% से इनका रेवेन्यू जो है ऊपर जाएगा। तो पाया ने थे मतलब बढ़िया बढ़िया हूं गल्ला ना देखो
ट्रिलियन, यू टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस नाउ,
ट्रिलियंस नाउ, पहले बिलियंस की हम बात करते थे तो नाउ दे आर टचिंग ट्रिलियंस,
नॉट मिलियंस,
यानी कि एक कंपनी जो है पाकिस्तान खरीद सकती है। पायन व्हाट इज दिस,
है 2-3 पाकिस्तान खरीद
छोटे छोटे बहुत सारे पाकिस्तान खरीद सकती है जी, यानी पूरा इलाका ही खरीद सकती है
ट्रिलियंस,
हाँ यानी बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान
5 बिलियन डॉलर्स,
पांच बिलियन, हाँ हाँ
5 बिलियन चाहिए ताकि हमारा खर्चा
उतर जाए ना। तो ये खरीद सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है,
पूरा एरिया ले लो,
साड़ी खैर है। अच्छा जनाब, आपने अगर अच्छा खाना खाना है जो कि आज हमने भी खाया बड़ा मजे का, तो नानन कबाब पे जाएं, इनके ग्रिल्ड आइटम्स बहुत जबरदस्त हैं और जो है आप उधर बैठ के भी खा सकते हैं और आप अपना ऑर्डर भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर डालना है तो आप डालें 4162858191, दे आर लोकेटेड 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसेस सागा में। और जनाब दिलों के राजा थे बादशाह भी बहुत सारी आपको अच्छी कवरेज देते हैं, राइट कवरेज वो कहते हैं मैं आपको देता हूं, ऑल स्टेट एजेंसी के साथ हैं, वो कहते हैं जी मेरे को लाओ तो फिर मैं तुम्हें दसूंगा, इसके अलावा नहीं मैं दसूंगा, अगर आप मेरे पास नहीं मैं आपको अच्छी डील नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, तो आप राजा पाशा जी को कॉल करें 6472903773 एंड जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल, ये कहते हैं जी बड़ा जबरदस्त किस्म के हमारे पास इंतजाम हैं, 32 रूम लग्जरी होटल है, 1400 लोगों का प्लस टाई आप जो है यहां पे इंतजाम कर सकते हैं। है जी मैं माजद पाई थे आमिर, तो आपने अगर इतनी बड़ी पार्टी करनी है तो हमको नहीं भूलना, ढाई बंदों को आप हमें बुला सकते हैं। बहुत जबरदस्त यहां पे कुजीन है और बहुत आइडली लोकेटेड है 2935 जू रोड मिसिसागा पे, आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823 पे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने जो बार बार कहा जा रहा था ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ जो है नया लाडला है, नया लाडला है, तो आज मरियम नवाज ने कहा हां जी नवाज शरीफ साहब लाडले हैं मगर वो अवाम के लाडले हैं और वो जब भी आते हैं पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन वैसे ये तो जी अब बात सामने भी आ गई है, ब्लूमबर्ग की कल की रिपोर्ट भी कह रही है कि नवाज शरीफ साहब काफी तरक्की लाते थे मुल्क में जब आते थे, तो उन्होंने कहा जी कि जो है आप जो है वो नवाज शरीफ साहब को वोट दें, और उन्होंने इमरान खान साहब का नाम ना लेते हुए उनको कहा जी कि आपने अपने पैर पे खुद ही गोली मारी थी, जो कुछ आपने अपने आप को और अपनी पार्टी को डिस्ट्रॉय किया उसकी वजह आप खुद हैं और उसमें PMLN का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कल उन्होंने इल्जाम दिया था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो फाइट है अगेंस्ट इन्फ्लेशन और हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, उन्होंने कहा जी जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया था तो उसमें बहुत सारी कॉन्स्परेसी रिगिंग और फाउल प्ले शामिल था, वरना मेरे वालिद साहब की जो है वो नहीं जाती। आज ये एड्रेस कर रही थी एक गैदरिंग को ननकाना साहिब के अंदर, तो वहां पर उन्होंने ये बातें की। इसके अलावा जनाब बीबी जरदारी साहब ने आज रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जो है कॉन्स्टेंटली ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि कोई ना कोई है जिसकी मदद से वो आना चाहते हैं और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वरना पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ नहीं है। हम आपको याद करा दें कि अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में ये बिलावल जो जरदारी साहब हैं ये भी और बाकी सारे भी लंदन जाते थे नवाज शरीफ के साथ मीटिंग्स करने और बड़ी प्यार मोहब्बत की रोमांटिक किस्म की बातें होती थी कैंडल लाइट डिनर में, है जी। तो अभी वो जो है ये गंदी गंदी बातें आना शुरू हो गई हैं। तो अब वो कहते हैं जी कि ये यानी कि बैकडोर चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं हैबिचुअल हैं, वो हमेशा रिवेंज लेते हैं और अगर इस दफा भी वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा गंदे किस्म का रिवेंज जो है वो लेंगे। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि हमारी कोई भी अलायंस पीएमएलएन या पीटीआई के साथ नहीं हो सकती है। हां, हमारी अलायंस अलबत्ता इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा नंबर इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है जो कंटेस्ट कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन में 8 को, तो हम उनको जो है ल्योर करने की कोशिश करेंगे टू बी पार्ट ऑफ पीपीपी। केयर टेकर सिंध होम मिनिस्टर जो है ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज, उन्होंने आज कहा है जी कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है उसको इजाजत नहीं होगी कि जो ये पोलिंग बूथ्स हैं उनके अंदर जाने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी का कोई भी बंदा चाहे वो रेंजर्स है चाहे वो पाक जो है मिलिट्री का बंदा है कोई भी अंदर नहीं जा सकेंगे। अलबत्त उन्होंने कहा जी कि हम असिस्टेंस के लिए ताकि कोई हुलड़बाजी ना हो पोलिंग बूथ्स के आसपास, तो उस दर हम जो है बहुत सारी पुलिस और रेंजर्स जो है उसको और पाक पुलिस के जो बंदे हैं पाकिस्तान मिलिट्री के जो बंदे हैं वो उनकी हिफाजत तो जरूर करेंगे लेकिन अंदर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि लेडी हेल्थ स्टाफर्स जो हैं वो भी इलेक्शन की ड्यूटी पे जो औरतें होंगी विमेन्स पोलिंग स्टेशन में उनको भी हम करेंगे अपॉइंट करेंगे ताकि अगर कोई वहां पे कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है तो वो उनको फौरन से फर्स्ट एड दे सकती हैं। वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि फूल प्रूफ सिस्टम हो ताकि बिल्कुल जो इलेक्शन है फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आए। उन्होंने कहा जी पैसे की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हाँ जी पहन ले जितना लुटे फिर सारे पैसे की कितनी कमी होती है। वो कहते हैं जी पैसे की कोई कमी नहीं है और सारे के सारे फंड्स जो हैं हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे दिए हैं ताकि वो सारी सिक्योरिटी दें। उन्होंने कहा जी 5,954 नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं एंड ओवर 12,000 सेंसिटिव एंड वेरी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके लिए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री के और रेंजर्स जो हैं उसके ऊपर बाहर वो पहरे दें। 122,000 पुलिस ऑफिशियल्स एंड 1,984 पाक मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं डिप्लॉय किए जा रहे हैं सिंध में। ये है चक्कू, ठीक है जी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है उन्होंने रिजर्व किया है अपना वर्डिक्ट ऑन इमरान खान पिटीशंस अगेंस्ट ट्रायल्स इनसाइड जेल इन 190 million pounds एंड तोशाखाना केसेस, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये चुप छुपा के आप मत करें, ये ओपन करें लोगों के सामने ताकि लोगों को पता चल सके कि सच क्या है, क्योंकि अंदर जब आप छुप छुप के करते हैं तो फिर लोगों को पता नहीं चल सकता कि सच क्या है और एक गलत नैरेटिव बनता है। इमरान खान साहब और दूसरे जो इनके जो पीटीआई के लोग हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीस इन 190 million pound केस, और जिसमें कि वो कहते हैं जी कि एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है यानी कि वो मलिक जो है रियाज का भी नाम लेते हैं उसमें वो शामिल हैं एंड करप्ट प्रैक्टिसेस अगेंस्ट स्टेट गिफ्ट्स, ये दो केसेस हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जनवरी 9 को इंडाइट किया था इमरान खान साहब और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में और जो एक केस में जो कि फाइल किया था नैब ने और इंडाइटमेंट इनकी की थी 190 million pound केस में जो कि डेफर किया गया था लास्ट वीक क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम जो थी वो चेंज कर दी थी। जज बशीर जो अभी करंटली ये सारे ट्रायल्स जो हैं दोनों केसेस के होल्ड कर रहे हैं ऑन द अप्रूवल ऑफ फेडरल कैबिनेट। इमरान खान साहब ने जो है वो चैलेंज किया था जेल ट्रायल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बेंच के सामने। आज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा जी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चलता है गलत किस्म का उससे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और होपलेसनेस आ जाती है। आज ये बात कर रहे थे पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में और जिसको के अटेंड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब भी। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि आप जब न्यूज कोई देते हैं तो उसको डबल चेक करें कि उसका सोर्स क्या है, वो ठीक भी है। आप सोशल मीडिया से उठा के दे देते हैं विदाउट प्रॉपर रिसर्च पॉजिटिव थिंकिंग और उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर केओस आता है। उन्होंने कहा जी कि آرمڈ فورسز جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں کسی قسم کا تھریٹ اور کانسپریسی جو ملک کے خلاف ہو اس کو نپٹنے کے لیے, اور ہم اپنی سوورینٹی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی پاکستان کا برائٹ فیوچر جو ہے وہ یوتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے پاکستان کو بڑی اچھی ینگ ہیومن کیپٹل اور منرل ریسورسز دیے ہیں. ہمارا مین ایم جو ہے وہ یہی رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ریلیجن سولاشن اور کلچر کے مطابق جو ہے وہ چلیں, اور اسی لیے پاکستان کو کریٹ کیا گیا تھا بیکاز ہم ڈفرنٹ تھے ہندو سے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ویسٹرن کلچر جو ہے وہ اپنا لیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان بہت زیادہ اپنے یوتھ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, اور آپ کو بھی اپنے ملک اور نیشن اور کلچر اور سولاشن کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یو بلانگ ٹو ا گریٹ کنٹری اینڈ نیشن, اور یو آر دا ٹارچ بیئرز آف ا برائٹر ٹریڈیشن آف پاکستان. انہوں نے کہا جی کہ اس ملک کو اقبال اور جرا کی ڈریمز کے مطابق بنائیں. انہوں نے کہا جی کہ اسد منیر صاحب نے کہا کہ جی ہم ٹیررسٹ کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری سیکریفائزز بھی دی ہیں. کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہی ہے, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ ہٹ گئے تھے اپنے عہدے سے کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹری کے لیول سے. تو پرائم منسٹر کاکر صاحب نے آج جو ہے فیڈرل منسٹر فار کامرس انڈسٹریز پروڈکشن گوہر اجاز صاحب کو جو ہے وہ بنایا ہے کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر, اور یہ جو ہے اب نیا اپنا انہوں نے آج پورٹ فولیو لیا ہے. بگٹی صاحب جو تھے انہوں نے دسمبر 19 کو اپنے عہدے سے ریزائن کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے اپنے خود کے پرسنل ریزنز ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد ریزگنیشن کے انہوں نے پی 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 کو جوائن کر لیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ اب الیکشن لڑنا چاہتے تھے پی 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 کے ٹکٹ پہ, تو دیٹس وائی ہی لیفٹ دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. ہندوستان کے اندر جناب جب سے رام مندر بنا ہے بہت زیادہ ہنگاموں کی خبریں آ رہی ہیں ڈفرنٹ جگہوں پہ, اور جتنا بھی ہندوتوا موب ہے وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ جا رہا ہے, جے شری رام جو ہے وہ اس کے نعرے لگاتا ہے اور جا کے توڑ پھوڑ کرتا ہے. ایک موب 200 سے 300 مین کا وہ ممبئی کے سیکٹر 5 کے شانتی نگر کے ایریا میں میرا روڈ پہ پہنچا, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے یہ سیفرون فلیگز لہرائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے, اور ہر وہ دکان جس کے اوپر سیفرون جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا اس کے اوپر توڑ پھوڑ کی. بڑے بڑے اپنے جو ہے بیک پیکس کے ساتھ آئے تھے جو بھرے ہوئے تھے پتھروں سے, وہ پتھر جو ہے انہوں نے دکانوں کے شیشوں پہ مارے, جو شیشے ان کے ٹوٹے, بہت سارا نقصان ہوا, مینیکنز ٹوٹے, اور بہت جو لوگوں کا وہاں پہ اندر سامان پڑا تھا وہ ٹوٹا. یہ نیا نگر پولیس اسٹیشن جو ہے اس کے ایریے میں ہوا, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ پولیس کھڑی رہی اور یہ تماشا دیکھتی رہی, اور انہوں نے کسی صورت بھی اس موب کو نہیں روکا. یہاں تک کہ جب شاپ کیپرز ایف آئی آر لکھوانے کے لیے گئے تو پولیس نے ایف آئی آر لکھنے سے بھی انکار کیا, پھر ان کے لائر کے زور دینے کے اوپر انہوں نے لکھا. اسی طرح سیکٹر 3 کے اندر بھی ایک ٹیمپو ڈرائیور جو ہے جس کی کہ ٹیمپو پہ لکھا ہوا تھا راشد ٹیمپو سروس, جو کہ آبویس ہی تھا کہ یہ کسی مسلمان کا ہے, اس کو روکا, اس کو مارا پیٹا, اور اس کے اندر جو دو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی اتنا مارا کہ وہ بہت زیادہ انجرڈ ہوئے, اور پولیس میں پھر سوری ہاسپٹل میں ان کو لے کے جانا پڑا. اسی طرح ایک موبائل شاپ کے اندر بھی ایک آدمی جس کی کہ داڑھی نظر آ رہی تھی اس کو مارا پیٹا, پھر ایک اور آپٹیشن کی شاپ تھی اس میں بھی کچھ لوگ جو کہ داڑھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمان لگ رہے تھے ان کو مارا پیٹا. پھر جو ہے یہ ایک مغل ایرا کی جو مسجد ہے یو پی کے آگرہ میں, وہاں پہ بھی کچھ لوگ اپنے سیفرون فلیگز کے ساتھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم شوبھا یاترا نکالے ہوئے ہیں, اور رائٹ آفٹر رام مندر کی جو سیرمنی ہوئی تو وہاں پہ جو کیئر ٹیکر ہیں دیوان جی کی بیگم شاہی مسجد, انہوں نے کہا جی کہ یہ 1000 سے 1500 لڑکے جو ہیں اندر آئے لاٹھیاں اور سوٹیاں لے کے, انہوں نے مسجد کو توڑا پھوڑا یہ بلوچ پورا کے ایریا میں, اور کیوس کریٹ کیا اور اپنے سیفرون جھنڈے لڑکائے, اور میناروں پہ جو مسجد کی مینارے ہیں ان کے اوپر جو ہیں اپنے بھگوا جو ہیں یہ لٹکائے, فلیگز لٹکائے, جو منرٹس ہیں اس کے ماسک کے وہ توڑے, گندی قسم کی لینگویج یوز کی, ہمیں تھریٹ کیا اور جے شری رام کے نعرے لگائے مسجد کے اندر. تو یہ جو بہت ہی غلط قسم کی رسم سیٹ اپ کی گئی ہے یہ اب اس سے بن بدن آنے والے دنوں میں اور خرابی آئے گی. دا وائر کے جو سینئر جو ایڈیٹر ہیں جی کرن تھاپر صاحب, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو لیا. آپ کو پتا ہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ایک بڑے مشہور ایک لیڈر ہوتے تھے یوگیندر یادو, جنہوں نے کہ پھر چھوڑ دیا تھا, لیکن انہوں نے چلائی تھی بھارت جوڑو ابھیان, ایک یاترا چلائی تھی. تو یہ جو ہے اس میں جو انہوں نے انٹرویو کیا ہے کرن تھاپر کے ساتھ, انہوں نے یہ جو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترا جو ہے اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر جو ہیں آسام کے ہیمانتا بسوا شرما وہ جان بوجھ کے جو ہیں پرووک کر رہے ہیں یاترا میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور فالس گراؤنڈز کے اوپر جو ہے جو وہ کر رہے ہیں راہل گاندھی اور ان کے ساتھیوں کو اندر انٹر نہیں ہونے دے رہے, اور جو ہے وہ یہ یاترا کو وہاں سے جانے نہیں دے رہے ہیں, اور اس इसलिए उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने कॉन्स्टेंटली कहा है कि ये जो शर्मा साहब की जो गवर्नमेंट है और ये जो है मुल्क के सबसे ज्यादा करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। तो इससे पहले जो शर्मा साहब हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था डीजीपी आसाम को कि जो एक केस फाइल करो गांधी के ऊपर फॉर प्रोवोकिंग एंड इंसाइटिंग क्राउड्स। तो उसके ऊपर योगेंद्र यादव साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत रस्म है और इस नैरेटिव जो है उसको चैलेंज करने की मुल्क के अंदर जरूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो डेंजर में है और हम जो है उनको भूलते चले जा रहे हैं कि हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जब उनसे पूछा गया कि ये जो यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर सकते थे, भारत जोड़ो नया यात्रा, तो ये नया जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो योगेंद्र यादव ने कहा ये जो नया है ये शो करता है लिबरल ट्रांसलेशन एज जस्टिस। तो न्याय इसको बोल सकते हैं, न्याय के बजाय न्याय बोल सकते हैं, न्याय मीन्स जस्टिस। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी कि इसके अंदर हम जस्टिस लाना चाहते हैं इसके थ्रू। उन्होंने जब बात की करण थापर साहब ने सीट शेयरिंग के ऊपर के क्या हो सकती है कांग्रेस आप टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बीच में महाराष्ट्र और बिहार के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो है वो बात की जा सकती है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जो मेन चीज अभी देखने वाली है इस यात्रा की कि जो लास्ट ईयर भारत जोड़ो यात्रा 2022-23 में खत्म हुई थी उसके अंदर जो एक ये राहुल गांधी का पप्पू इमेज आया था वो खत्म होता जा रहा है और ये एक लीडर की तरह इमर्ज कर रहा है। तो एम अब यही होना चाहिए कि मोदी जी और बीजेपी जो है 272 सीट्स न जीते, चाहे और कोई भी पार्टी जीते कांग्रेस या कोई भी और जीते, लेकिन मोदी जी और बीजेपी जो है इतनी सीटें नहीं जीतनी चाहिए, तभी फिर जो है बीजेपी को हटाया जा सकेगा, वरना ये कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी फ्री रहेगी और ये सब चीजें जो हैं ऐसे ही खराब चलेंगी। इसीलिए अपने दिमाग में एक बिगर पिक्चर रखें, तो उस बिगर पिक्चर में इनको हराना जो है वो जरूरी है। और जनाब संजय लीला भंसाली साहब की नई फिल्म आने वाली है, लेकिन ये आएगी क्रिसमस 2025 को। इसका उन्होंने ऐलान किया है कि ये फिल्म जो है इसका नाम होएगा लव एंड वॉर। इस लव एंड वॉर के अंदर आपको भंसाली प्रोडक्शंस लेकर आएंगे आपके सामने। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का स्टोरी लाइन क्या है इसके ऊपर तो संजय लीला भंसाली ने कोई बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये फिल्म जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब जाहिर है कि एक्टर्स बड़े हैं तो अब लोगों की भी बढ़ गई है क्यूरियोसिटी कि क्या होने वाला है। आज एक और जो ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंड देखा गया वो जो फाइटर आ रही है फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की, उसके बारे में है। पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे गल्फ में ये फिल्म जो है इसको बैन कर दिया गया है। ये फिल्म अब सिर्फ दुबई के अंदर चलेगी मिडल ईस्ट में, और अभी रीजंस क्या हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं कि इस फिल्म को बैन क्यों किया गया है। और जो मेकर्स हैं फिल्म के फाइटर के, उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं की है। खासतौर पर उनके जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी पता चलेगा कि क्यों मिडल ईस्ट के अंदर ये फिल्म जो है ये की गई है बैन। ये फिल्म जो है रिलीज की जा रही है January 25th को, तो अब इसके ऊपर जो है बड़े सवाल हैं कि भाई क्या हो रहा है। और कुछ दिन पहले दिसंबर के महीने में मुंबई पुलिस ने एक इवेंट किया था, उमंग प्रोग्राम वो हमारा हमेशा करते होते हैं मुंबई पुलिस वाले, उसमें जो है शाहरुख खान साहब और सलमान खान जो थे वो भी बुलाए गए थे और बड़ा वो नाचते कूदते रहे, लेकिन बहरहाल वो जो था वो सामने नहीं आ सकी थी वीडियो। अब इसका जो एक नया प्रोमो है वो सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये पूरे का पूरा इवेंट जो मुंबई पुलिस का उमंग इवेंट हुआ था वो हम लगाएंगे। इसके अंदर जो उनका क्लिप आया है उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेज पर जब आए पठान और भाईजान झूम उठे सारे जवान, ये इसका जी कैप्शन उन्होंने दिया है। तो शाहरुख खान साहब जो हैं देखे जा रहे हैं अपने पॉपुलर जो इनका पठान सॉन्ग है उसके ऊपर गा रहे हैं जो इनका टाइटल ट्रैक था। इसके अलावा जवान का जो गाना था रमैया वस्तावैया उसके ऊपर नाच रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान को हंसते हुए देखा गया और जब होस्ट ने कहा कि सलमान भाई आज तो सारे पुलिस वाले आपके साथ हैं, तो सल्लू भाई ने कहा हाँ हाँ आज तो साथ हैं, लेकिन जो भी कोई रिपोर्ट चलती है आ जाती है वहां से क्योंकि दे कीप एन आई ऑन मी। तो हंस रहे थे वो। तो क्योंकि जो इनके ऊपर पिछले दिनों में केसेस बने हुए थे सल्लू भाई के, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। एंड जनाब प्री टूर्नामेंट फेवरेट जो थे जापान, उन्होंने आज डिफीट किया इंडोनेशिया को 3-1 से और एंड दे हैव एडवांस टू द लास्ट 16 ऑफ AFC एशियन कप 2023। ये जो फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं कतर में, उसमें इराक जो है उसने डिफीट किया वियतनाम को टू फिनिश एज ग्रुप लीडर्स ऑन 9 पॉइंट्स। इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे है विथ 3 पॉइंट्स और उनके अब कुछ हल्के से चांसेस अब रह गए हैं नेक्स्ट राउंड में रहने के, वरना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा AFC एशियन कप के जो होस्ट हैं कतर, उसने तो बड़े स्टाइल में जनाब अपना जो है ये फिनिश किया और इनका जो एक लड़का था हसन अल हेदून, उसने जब एक गोल किया बड़ा ही क्रूशियल अगेंस्ट चाइना, तो तब ये जीते। ये बड़ा ही डेडलॉक चल रहा था वरना कतर और चाइना के बीच में, ये मैच चल रहा था खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में, लेकिन मिडवे इन सेकंड हाफ इन्होंने ये किया। अकरम अफीफ जो था उन्होंने इसको कॉर्नर दिया था और अल हेदूस जो था इसने किया, और बड़ी खुशकिस्मती कतर की क्योंकि इन दो लड़कों को इसी मैच के लिए सब्स्टिट्यूट किया गया था, वरना इससे पहले ये नहीं खेल रहे थे। कतर जो है अब अपने ग्रुप ए के अंदर 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है और उसके बाद जो है ताजिकिस्तान है जिसने के बीट किया था लेबनान को 2-1 से। एंड जनाब शाह कंवर जो हैं पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर एंड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उनको अब पीसीबी का नेक्स्ट जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। इसका नोटिफिकेशन आज इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ने अंडर आर्टिकल 7(2) ऑफ पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है और उसकी अप्रूवल जो है पीएम जो इंटरिम गवर्नमेंट में है काकड़ साहब, उन्होंने दी थी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया पीसीबी के पेट्रोन काकड़ साहब का, उन्होंने कहा जी उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया और मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरा मेन काम होगा कि मैं पीसीबी चेयरमैन का फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराऊं एज सून एज पॉसिबल, और ये हो सकता है 8 फरवरी से जिसमें के मुल्क में जनरल इलेक्शन हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है जका अशरफ साहब को जिन्होंने के थोड़े दिन पहले रिजाइन कर दिया था। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान अंडर 19 टीम जिन्होंने के बीट किया है नेपाल अंडर 19 टीम को क्रिकेट में 5 विकेट से। श्रीलंका अंडर 19 ने हराया नमीबिया अंडर 19 को बाय 77 रन और वेस्ट इंडीज अंडर 19 ने हराया स्कॉटलैंड अंडर 19 को बाय 5 विकेट्स। ठीक है जी पायन,
पाकिस्तान में क्रिकेट के मैच क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है, ये लो।
हाँ जी क्रिकेट ही क्रिकेट चल रही है वहाँ पे,
लो हाँ हरा दिया उन्होंने।
हाँ बिल्कुल,
किसको हराया?
हाँ नेपाल को। भाई देखो जिस दिन तुम मेरे ना खेलोगे ना, अगर तुम बेईमानी की थी मैं अपनी विकेटें उठानिया चला जाना उधर। बस
पहले से तड़ी लगा दो,
पहले से ही अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसे गड़बड़ किया ना, मुझे हराने की कोशिश की, मैंने अपनी विकेटें उठानी और चले जाना।
हराना नहीं है,
हराना बस नहीं है,
बस
इतना आपने कहा।
मैंने हारने लगा,
हाँ
मैंने सीट
बिल्कुल विकेटें उठानी और जाना है घर, बस ठीक है। अगर आपने हारना है मेरे से खेल के, फिर आप मेरे साथ खेल सकते हैं।
ये थी आज की खबरें और बखेर खबरें, इंशाल्लाह ताला कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शादी जी थैंक यू,
थैंक यू भाई, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह
ताला। एंड अब मैं ले चलता हूं आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद। ऐसे ही सुनते रहिए साहब, हम आपके साथ 24 आवर्स हैं 6478724900 पर 24 आवर्स हम आपके साथ होते हैं, या आप चले जाइए www.eawaz.com पे और वहां पर आपको दो बटन नजर आएंगे, एक तो है लिसन लाइव का जहां पर आप रेडियो सुन सकते हैं और दूसरा है वॉच लाइव का, मींस आप हमें देख भी सकते हैं। सब चलिए फिर इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी कल फिर आपसे मुलाकात होगी, बखिया की बातें कल, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
आपका वेलकम है हजरत। भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हो नहीं नहीं जलूंगी सारी रात।
बारिशों का पानी कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हम से जो मैंने करी है सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मिला जमीन को मेरी यादें आधे पूरे हैं कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना
नहीं लेते अब तो आ जाओ मेरे सोने आ।
जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोनिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जैसे मौसम भी आते नहीं है बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे
जाने किसके पीछे
टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना, ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना,